ओम शांति।
हमारे सामने हमारे आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता जी उपस्थित हैं। हम महत्वपूर्ण अंग की कुछ और बात सुने, क्योंकि ये दिल जो धड़कता है उसी से ही संबंधित अभी हम उन ज्ञान रत्नों की चर्चा सुनेंगे। तो हमारे आदरणीय भ्राता डॉक्टर सतीश भाई जी से अनुरोध करेंगे कि वे हमें उन ज्ञान रत्नों का अखुट खजाना दें। धन्यवाद।
ओम शांति। अभी हम सभी फिर दोबारा से दो मिनट, वैसे आज का टॉपिक है याद की यात्रा द्वारा विक्रम विनाश की विधि। हम सभी को विक्रम विनाश करने हैं ना, समय बहुत थोड़ा है, तो पहले हम दो मिनट एकदम साइलेंस, एकदम स्वीट साइलेंस का अनुभव करें, जैसे हम यहां से परम धाम की यात्रा पे दो मिनट चलें, और फिर उसके बाद इस पे हम चर्चा शुरू करेंगे याद की यात्रा द्वारा विक्रम विनाश की विधि। सब एकदम साइलेंस में बैठे, पावरफुल याद हो एकदम। ओम शांति। मीठे बाबा ने इस सीजन में हमारा ध्यान, हम सब बच्चों का ध्यान खिंचवाया है कि समय बहुत बहुत थोड़ा है। ऐसा आप सभी को लगता है समय थोड़ा है? हम समय के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। साइंटिस्ट भी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि समय बहुत बहुत थोड़ा है, तो अब हमें वापस घर जाने की तैयारी करनी है। सभी को वापस घर जाना है? सभी को वापस घर जाना है? जाना है ना। कैसे जाएंगे? जब तक आत्मा पवित्र ना बने, संपूर्ण पवित्र ना बने, तब तक आत्मा उड़ करके वापस नहीं जा सकती है। तो आज का वरदान भी था, याद है ना सभी को आज का वरदान, संपूर्ण पवित्रता का वरदान था। तो उसके बगैर हम आत्मा में वो शक्ति नहीं आ सकती कि आत्मा वापस जा सके। तो हमें वापस जाने की तैयारी के लिए संपूर्ण पवित्र और सत्वप्रधान बनना अति आवश्यक है, और उसकी जो विधि बाबा ने बताई है वो है राजयोग। पिछले 63 जन्म जब से हम देहाभिमानी बने, जब से बॉडी कॉन्शियस आया द्वापर के शुरू से, तब से हम विक्रम करते आए। हम भूल गए थे कि हम आत्मा हैं, अपने आप को देह समझने लगे। तो सबसे पहले हम सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे, पहले हम समझेंगे विक्रम क्या है, विक्रम किसे कहा जाता है। वैसे आप जानते हैं किंतु उसकी थोड़ी गहराई में जाएंगे। जो काम हमें करना है पहले तो उसको ब्रीफ करना चाहिए ना, जो भी हम काम करना चाहते हैं पहले उस कार्य की गहराई में जाना होता है। तो पहले तो विक्रम है क्या चीज हम समझेंगे, फिर याद की यात्रा की विधि क्या है वो समझेंगे, फिर विक्रम विनाश करे कैसे वो समझेंगे, फिर आगे हमसे क्या क्या हम परहेज करें कि हमारे और विक्रम ना बने। अगर हमने एक तरफ विक्रम विनाश किए और दूसरी तरफ विक्रम बनाते गए तो क्या होगा? वो दिन तो कभी आएगा ही नहीं फिर, जिस दिन हम कह सके हम संपूर्ण पवित्र बन गए, पावन बन गए, है ना। तो ये तीन हम स्टेप्स में करेंगे, पहले विक्रम क्या है, फिर याद की यात्रा कैसे करनी है, और फिर विक्रम विनाश कैसे करने हैं। चौथी बात, क्या हम परहेज करें, क्या हम ध्यान रखें कि हमसे और विक्रम ना हो। आज की बुल्ली में काफी इन बातों पर अटेंशन था, तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे। और जो भी बातें हम सुनेंगे वो मुरलियों से ही उद्धृत हैं, बाबा की साकार वाणियों से और बाबा की अव्यक्त वाणियों से ही उद्धृत होंगी। और इसको हम थोड़ा साइंटिफिक एंगल से भी समझते जाएंगे, वैज्ञानिक विधि से, और ऐसी विधि हो जो सरल हो, जिसको हम सभी, चाहे नए हों बाबा के बच्चे चाहे पुराने हों, सब अच्छी तरह से उसको अभ्यास कर सके। तो सबसे पहले हम समझे विक्रम क्या चीज है। जो विक्रम शब्द है वो वी और कर्म से बना है, अर्थात वी मना विकार है ना। तो जो हमने कर्म किए इन पांचों कर्मेंद्रियों से, आंख से, खाली कर्म का मतलब हम हाथों से कर्म का मतलब नहीं है, आंखों से, मुख से, कानों से सुनना, आंखों से देखना, मुख से बोलना, मुख से खाना भी, ठीक है, हाथों से कर्म करना है। जो इन पांचों कर्मेंद्रियों से हमने विक्रम किए हैं, पांच विकारों के वश, कौन कौन से विकार के वश, काम विकार के वश, क्रोध विकार के वश, लोभ विकार के वश, मोह के वश और अहंकार के वश, जो भी हमने देखा है पिछले 63 जन्मों में, काम विकार के वश, किसी को काम की दृष्टि से देखा है वो भी विकर्म है ना, क्रोध से देखा है वो भी विकर्म है, लोभ से किसी की तरफ हमारी दृष्टि गई है तो वो भी विकर्म है, मोह से किसी को देखा है, बच्चे को या किसी को किसी की तरफ मोह की दृष्टि से देखा है वो भी विकर्म है। थोड़ा विकर्मों की गहराई भी समझ आनी चाहिए ना। तो हमने अहंकार से किसी को देखा है तो वो भी विकर्म किया है। ऐसे ही क्रोध के वश हमने किसी को देखा है ना, मतलब हमने काम के वश कुछ बोला है, क्रोध के वश कुछ बोला है, लोभ के वश कुछ बोल दिया है, मोह के वश, अहंकार के वश कुछ बोला है तो वो भी विकर्म है। काम विकार की कुछ बातें कानों में सुनी है, क्रोध की बातें सुनते हैं दूसरों की, लोभ मोह अहंकार की बातें सुनते हैं तो वो भी विकर्म है ना। ऐसे ही हमने हाथों से कुछ ऐसे कर्म किए हैं पांचों विकारों के वश होकर के, वो भी विकर्म है। और वो विकर्म खाली इसके वश नहीं, पांच विकारों के वश नहीं, किंतु पांच विकारों के भी बाल बच्चे हैं, इनका भी पूरा वंश है ना, उनके वश भी होकर के जो कर्म किए वो भी विकर्म कहलाते हैं। जैसे कि काम विकार के दो अंश जो है वो मुख्य है, आलस्य और अलबेलापन। आलस्य और अलबेलेपन के अंतर्गत भी जो हमने कर्म किए हैं वो भी विकर्म कहलाते हैं। ऐसे ही हमने जो क्रोध के दो मुख्य जो उसके अंश कहो वो है दूसरों में दोष निकालने की आदत और बदला लेने की भावना, उसके वश होकर के भी हमने जो कर्म किए वो भी विकर्म है। ऐसे ही लोभ के दो मुख्य अंश हैं शक और अनुमान। शक और अनुमान के अंतर्गत आकर के हमने जो भी विकर्म किए वो भी विकर्म ही हैं। ऐसे ही मोह के दो जो अंश कहलाते हैं उनके परिवार के जो हैं वो हैं चिंता और भय। तो चिंता और भय के अंतर्गत आकर के भी जो हम गलत कर्म किए हैं वो भी विकर्म है। और जो अहंकार के दो जो अंश हैं मुख्य, जल्दीबाजी, हर चीज में प्रेशर फील करना, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, अपनी हैबिट्स का प्रेशर, ये काम इसी ढंग से होना चाहिए है ना, तो वो ये जो जल्द प्रेशर, जल्दीबाजी फील करना, उसके अंतर्गत हमने आके जो काम किए वो भी विकर्म है। ईर्षा द्वेष के दूसरा जो इसका अंश है वो ईर्षा और द्वेष के वश आके जो हमने कर्म किए वो भी विकर्म है। और हमने जो भी विकर्म किए हैं वो सब विकर्म आत्मा 63 जन्मों में जो करती आई है वो सब इकट्ठे होते, आत्मा इस 63वें जन्म में जब शरीर में आई है, इस जन्म लिया तो अपने साथ लेकर के आई थी, और वो विकर्म संस्कारों के रूप में आए, स्मृति के रूप में आए, वृत्ति के रूप में आए, भावना के रूप में आए, संकल्पों के रूप में आए, और जब आत्मा ने गर्भ में प्रवेश किया तो उनको अंदर स्थापन कर दिया। ब्रेन की सेल्स, आपको पता है आत्मा का प्रवेश करती है गर्भ में कि कब प्रवेश करती है, 20 हफ्ते पर है ना, 5 महीना जब गर्भ तैयार होता है तब उस समय आत्मा प्रवेश करती है, तब तक दिमाग बन रहा होता है। तो जैसे आप यहां पर शांति वन में जब आए तो अपना बैग लेकर के आए थे ना, तो बैग में सब सामान था ना, तो आने के बाद जहां कमरा मिला आपको उसमें फिर आपने क्या किया, बाथरूम में बाथरूम का सामान रखा, कपड़े निकाल के अलमीरा में रखे, वापस जाएंगे तो क्या करेंगे, साथ ले जाएंगे ना। ऐसे जब आत्मा आती है तो अपने साथ जो संस्कार, जो स्मृतियां, जो वृत्ति, भावना और संकल्प लेकर के आती है वो ब्रेन के डिफरेंट हिस्सों में स्टोर कर देती है। हमारे ब्रेन में लगभग 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स हैं। कितने न्यूरॉन्स हैं? 10,000 करोड़, 100 बिलियन न्यूरॉन्स माना। वो सेल्स हैं, वो कोशिकाएं हैं जिनमें वो स्टोर करती है, वो केमिकल्स के रूप में स्टोर हो गए। और एक बात और यहां ध्यान रहे कि जो जिन संबंध संपर्क में रहकर के हमने, हमारे पिछले जन्म में माता पिता थे, भाई बहन थे, पति पत्नी थे, बच्चे थे, दोस्त थे, है ना, थे ना संबंध संपर्क वाले और थे, वो सबके साथ जिनके साथ हमने वो कर्म किए, गलत देखा, गलत बोला, गलत सुना, गलत खाया या गलत किया, गलत कर्म किए, वो आज हमारे आसपास है। वो आज हमारे साथ हमारे माता पिता के रूप में, हमारे भाई बहनों के रूप में, हमारे ही पति या पत्नी के रूप में, हमारे ही बेटा या बेटी के रूप में, हमारे ही दोस्त के रूप में, हमारे ही पड़ोसी के रूप में, हमारे ही जहां हम काम करते हैं वो हमारे या तो बॉस हो सकते हैं, हमारे बड़े हो सकते हैं, या हमारे साथ वाले हो सकते हैं, या हमारे से छोटे हो सकते हैं, या हमारे नौकर चाकर भी हो सकते हैं, नहीं, वो आज हमारे आसपास हैं। तो जब हम विकर्ण विनाश करने की बात कर रहे हैं तो थ्योरी की बात नहीं कर रहे हैं कि हम बैठे और योग में और एक घंटा योग किया सुबह सुबह अमृत वेला या दिन में और हमारे विकर्ण विनाश हो गए। चलिए 2 मिनट अब बाबा को याद करें फिर आगे चलते हैं।
प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए।
तो हम बात कर रहे थे विकर्मों की, तो ये सब हमारे यहाँ स्टोर हो गया है, हमारे ब्रेन में सब स्टोर है। और जो भी संबंध संपर्क में जन्म बताया आपको, वो संबंध संपर्क वाले जो हैं वो भी एक आत्मा है और उनके भी दिमाग में वो सब स्टोर है। और वो प्रैक्टिकल में हमको क्लियर करना है, खाली थ्योरी में नहीं। कई बार हम समझते हैं हमने आधा घंटा योग किया और योग के बाद हम अपने घर जाते हैं या सेंटर पे मुरली सुनकर जाते हैं तो घर में जाकर के हमें पति पत्नी बच्चे या जो भी मिलते हैं हम देखते हैं उनका व्यवहार तो बदलता ही नहीं हमारे प्रति। वहां तो हम बहुत मीठी मीठी बातें किया और घर में जाने के बाद फिर उनके संबंध संपर्क में आने पर वो तो हमें नहीं अच्छा समझते हैं और हमें हमारी स्थिति वैसे कि ज्यों की त्यों रह जाती है। तो हमें प्रैक्टिकल में विक्रम विनाश करने के लिए क्या करना होगा, थ्योरी में तो करना ही है किंतु प्रैक्टिकल में जिनके साथ हम रह रहे हैं संबंध संपर्क में, माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, पति पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, पड़ोसी के साथ, जहां हम कार्य कर रहे हैं, जो हमारे बड़े हैं, हमसे छोटे हैं, हमारे बराबर वाले हैं, उनके साथ भी प्रैक्टिकल में विनाश करने हैं। ये जो केमिकल जो बने हैं इनको शरीर छोड़ने के बाद विनाश करना है कि अभी अभी फरिश्ता शरीर में बनना है कि शरीर छोड़ने के बाद बनना है, आप क्या समझते हैं? फरिश्ता शरीर में रहते रहते बनना है कि शरीर छोड़ने के बाद बनना है? कर्मातीत शरीर छोड़ने के बाद बनना है कि पहले बनना है? शरीर में रहते रहते बनना है ना, फरिश्ता बनकर के शरीर छोड़ना है, कर्मातीत होकर के शरीर को छोड़ के जाना है ना। तो ये कर्म करते करते घर घर परिवार में रहते रहते करना है, ये घर बार छोड़ने के बाद करना है, गृहस्थ में रहते हुए, सब कार्य करते हुए, नौकरी करते हुए, खाना बनाते हुए, खाना खाते हुए, हर कार्य करते हुए हमें करना है। वो स्थिति हमें आनी है, उसके लिए हम क्या करें? ये जो ज्ञान है ये सच्चाई है, रियलिटी है, कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई फिलॉसफी नहीं है, ये परमात्मा ने स्वयं ये ज्ञान हमें दिया है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं। जैसे मेरे शरीर का नाम है सतीश गुप्ता, राइट? अगर कोई मुझे कहे कि मैं अपना नाम, मेरा नाम मनोज शर्मा हूं, तो मुझे कहे कोई आपका नाम मनोज शर्मा है, और मैं अपने आप को मनोज शर्मा समझने लगूं तो क्या होगा? मेरा मन टिकेगा? टिकेगा नहीं? टिकेगा ना, कि मैं तो मनोज शर्मा हूं ही नहीं। मन में बहुत संकल्प आएंगे, कहीं भी मैं जाऊंगा तो मुझे अपने आप को मनोज शर्मा कहने में डर लगेगा, घबराहट होगी। जो मैं नहीं हूं तो कैसा होगा? मन अशांत होगा, और ज्यादा अशांत हो जाएगा, पीस खत्म हो जाएगी, शांति खत्म हो जाएगी। किंतु अगर मैं अपने आप को सतीश गुप्ता कहूं तो थोड़ा मन टिकेगा, राइट, है ना, टिकेगा ना। और मन टिकने से क्या होगा? किंतु सतीश गुप्ता समझने से भी क्या होगा? क्या याद आएगा? सतीश गुप्ता के मां बाप याद आएंगे, है ना, मुझे अपने मां बाप याद आएंगे, शरीर के मां बाप याद आएंगे, भाई बहन याद आएंगे, पत्नी याद आएगी, बच्चे याद आएंगे, दोस्त याद आएंगे। ये मेरी आदत है बचपन से, ये चीज खाने की मेरी आदत है, मुझे ये खाने को चाहिए, मुझे ये ऐसा मेरी आदत है, इस तरह सोने की आदत है, इस तरह उठने की आदत है, जो मेरे स्वभाव संस्कार है, मुझे संबंध याद आएंगे, संपर्क याद आएंगे, स्वभाव संस्कार याद आएंगे अपने बचपन से जो इस जन्म में मिले हैं, है ना, नहीं, और पदार्थ जो चीजें मेरी हैं, जो इस जीवन में मैंने मुझे मिली हैं, वो याद आएंगे। तो मन फिर भागना शुरू हो जाएगा? नहीं भागेगा, भागेगा ना। इसकी बजाय अगर मैं अपने आप को रियलाइज करूं कि मैं कौन हूं। जब कोई आदमी मरता है तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कि वो तो चला गया, ये उसका शरीर पड़ा है। तो हम हैं कौन? जो चला गया वही तो हम है ना। तो ये अपने आप से एक्चुअली ज्ञान का जो पहला स्टेप है ना, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान कोई ऐसे मानने का नहीं है, रियलाइज करने का है, रिवाइज करने का है, और उसके बाद एक्चुअलाइज करने का है। एक्चुअलाइज समझते हैं आप? एक्चुअलाइज माना रियल लाइफ में लाने का है, कार्य व्यवहार में लाने का है, और कार्य व्यवहार में लाने के बाद फिर अनुभव होगा, और अनुभव से परिवर्तन होगा। परिवर्तन रियलाइज से भी नहीं होगा, रिवाइज करने से भी नहीं होगा, एक्चुअलाइज करेंगे। एक्चुअलाइज माना जब हम जीवन में दिन प्रतिदिन के जीवन में उसको रोज लाएंगे, हर समय यूज करेंगे, संबंध में, संपर्क में, माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ, पति पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, जहां हम कार्य करते हैं उनके साथ, अपने से बड़ों के साथ, अपने से छोटों के साथ, अपने बराबर वालों के साथ, जब उस रूप को उस तरह से प्रैक्टिकल में लाएंगे तो अनुभव होगा। अभी हमको क्या अनुभव होता है? अभी हमको वो वाले लौकिक संबंधों का अनुभव होता है ना, माता पिता से माता पिता का, भाई बहनों से भाई बहनों का, पति पत्नी से पति पत्नी का, बच्चों का, बच्चों से, उसी रूप में हम देख रहे हैं। इसलिए विक्रम विनाश नहीं हो रहे हैं, विक्रम हो नहीं रहे हैं किंतु विनाश भी नहीं हो रहे हैं। एक बात मैं यहां और ऐड कर दूं, जब से बाबा के बने, 63 जन्म तो हमने विक्रम किए देह विमान के वश, 5 विकारों के वश, किंतु जब से बाबा के बने एक नया परिवर्तन हो गया। क्या परिवर्तन हो गया? पहले एक विक्रम करते थे उसका एक गुना हिसाब बनता था, जब से बाबा के बने तब से क्या हुआ? 100 गुना हो गया। एक विक्रम किया हमने, सुबह अमृत वेला पावरफुल किया, थोड़े से विक्रम विनाश किए, दिन में अटेंशन नहीं रहा, तो क्या हुआ? हमने विक्रम कर लिया। मैंने बताया 5 विकार और उनके अंश के वश होकर के हमने कोई विक्रम कर लिया, आंखों से, नाक से, मुख से, कानों से और हाथों से कोई भी विक्रम कर लिया, तो उसका फल कितना हुआ? कितना हुआ? 100 गुना। तो हमने कमाई ज्यादा की क्या नुकसान ज्यादा किया? नुकसान ज्यादा हो गया ना, तो हम भारी हो गए ना। तो अभी हमको ये अपने आप को रियलाइज करना पड़ेगा कि हमको बहुत गहराई में जाना होगा। अब देखते हैं, हम बाबा के हम बन गए, अब बाबा के बनने से क्या परिवर्तन हमारे अंदर होता है? जब हम बाबा के बने, इससे पहले हम थोड़ा समझ लें कि आत्मा के बारे में थोड़ा समझ लें कि हमें कैसे उसको परिवर्तन करना पड़ेगा। आत्मा तो एक बिंदु है, आत्मा एक बिंदु है, पॉइंट ऑफ एनर्जी है, उसमें से सात एनर्जी निकल रही है, सात गुण निकल रहे हैं जिससे शरीर चल रहा है। ज्ञान, पहला है ज्ञान, दूसरा है पवित्रता, तीसरा है शांति, फिर है प्रेम, फिर है सुख, फिर आनंद और फिर शक्तियां। शक्तियां कौन कौन सी हैं? परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, विस्तार को सार में लाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति और सहयोग करने की शक्ति, आठों शक्तियां हैं। तो ये आत्मा से निकल रही है और सारी बॉडी में फैल रही है। जो आत्मा के बिल्कुल नजदीक वाला हिस्सा है, जो आत्मा के बिल्कुल यहां एकदम, ये आत्मा यहां वृक्ष के मध्य विराजमान है, यहां से लगभग 2.5 इंच अंदर और ऊपर से 3 इंच नीचे, यहां नहीं है आत्मा, इससे 2.5 इंच अंदर है ना, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में है। और जो उसका जो सेंट्रल एरिया है, जो सेंट्रल एकदम उसके आसपास जहां खूब सारी एनर्जी जमा है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां, उसको हम कॉन्शियस भी कहते हैं, उसको हम बुद्धि भी कहते हैं, उसको हम दिल भी कहते हैं। और उसके बाहर जो है स्मृतियां हैं, उसके बाहर मन है, मन के चार एस्पेक्ट होते हैं, क्योंकि हमें क्या परिवर्तन करना है हमें पहले पता होना चाहिए। उस मन के अंदर चार एस्पेक्ट हैं, बाबा ने मुरलियों में बड़ा क्लियर किया है कई बार, मन के चार हिस्से कहो या एस्पेक्ट कहो। पहला है स्मृति, स्मृति माना यादें, स्मृतियां जो हम पिछले जन्मों से लेकर के आए हैं, इस जन्म से जब से पैदा हुए तब से वो स्मृतियां बनी हैं, संबंध संपर्क में आने से, वो विकारों के वश कर्म किए वो सब स्मृतियों के रूप में हमारे न्यूरॉन्स में जमा हो गए हैं, केमिकल मॉलिक्यूल्स के रूप में जमा हो गए हैं। वृत्ति, वृत्ति माना एटीट्यूड, है ना, जैसी स्मृति होती वैसी वृत्ति, फिर वो वृत्तियां भी हमारे अंदर स्टोर हैं। फिर भावनाएं इस हिस्से में, टेम्पोरल लोब और इस एरिया में, लिम्बिक सिस्टम वाले एरिया में हमारी भावनाएं हमारी स्टोर है, इमोशंस वो स्टोर है। और संकल्प, हाइपोथैलेमस के आसपास के एरिया में, यहां पर वो संकल्प हमारे स्टोर है। ये है हमारा मन, मन के चार हिस्से, स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प। जो चीज हम बार बार करते हैं, संकल्प बोल या कर्म जो हम बार बार करते हैं, वही संस्कारों के रूप में हमारे स्मृतियों के रूप में जमा हो जाते हैं, उसे संस्कार कहते हैं। संस्कार क्या चीज है? जो चीज हमने बार बार की वो हमारे संस्कार बन गए। जैसे कि कोई आदमी स्मोकिंग करता है तो क्या कहलाता है? स्मोकर। उसका संस्कार बन गया स्मोकिंग करने का। कोई शराब पीता है तो शराबी, अपने संस्कारों से व्यक्ति पहचाना जाता है। कोई क्रोध करता है तो क्रोधी कहलाता है, वो संस्कार बन गया उसका क्रोध करने का, है ना। तो ये हमारे अंदर सब स्टोर हो गया। तो ये सब, अब जब हम बाबा के बने तो उस समय हमारे अंदर बुद्धि में क्या है? बुद्धि में हमारे संबंध संपर्क, बुद्धि में हमारे क्या 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 बसा हुआ है? अभी देह बसी हुई है, है ना, अपनी देह। जरा भी देह को कुछ होता, क्या फील, क्या कितनी फीलिंग होती है? जरा सा कुछ कहीं लग जाए, चोट लग जाए या कोई बीमारी हो, बुद्धि वहीं लगी रहती है। बुद्धि में वो देह समाई हुई है, राइट। फिर देह के संबंध बुद्धि में समाए हैं, मां बाप, पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन, सब कुछ बुद्धि में समाया हुआ है। देह का स्वभाव संस्कार बुद्धि में समाया हुआ है, है ना। देह के पदार्थ बुद्धि में समाये हुए हैं। जरा सा कुछ चीज, आपकी चप्पल अभी उठ जाए, कोई दूसरा पहन के चले जाए तो क्या होगा? सारी रात नींद नहीं आएगी। बुद्धि में वो ऐसा ऐसा संकल्प पैदा होंगे, बुद्धि में स्मृतियां वो जागृत होंगी, सारी रात नहीं आएगी। वो कहां समाई? जो भी देह के पदार्थ है वो कहां समाये हुए? बुद्धि में समाये हुए। तो सबसे पहले जब बाबा के बच्चे बनते हैं, हमने बाबा को बहुत ढूंढा, हमें बाबा मिला नहीं, किंतु बाबा ने हमें ढूंढा, बाबा ने हमें सिलेक्ट किया है, ना जाने कहां कहां से ढूंढा है। तो बाबा ने हमें सबसे पहले क्या दिया? सबसे पहले हमें दिव्य बुद्धि दी। क्या दिया हमें सबसे पहले? बाबा के बनते ही हमें क्या गिफ्ट मिली है? सबको मिली है। क्या मिला है? दिव्य बुद्धि। मन दिव्य नहीं दिया है, संस्कार दिव्य नहीं दिए हैं, वो हमको बनाने हैं। सिर्फ क्या दिया? दिव्य बुद्धि दी। दिव्य बुद्धि किसे कहते हैं? दिव्य बुद्धि माना वो बुद्धि जिसमें सातों गुण भरे हुए हों, ज्ञान से भरपूर बुद्धि। पहले अज्ञान से भरपूर बुद्धि थी, अभी किसी से बुद्धि भरपूर है? बुद्धि में सबको क्लियर है ज्ञान, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मैं किसका हूं, मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, और मुझे सर्व प्राप्तियां किससे होने वाली हैं, बड़ा क्लियर है। ड्रामा का ज्ञान भी क्लियर है, सत्ययुग में थे, त्रेता में आए, द्वापर में आए, अभी कलयुग में है, अब संगम पर है, अब सत्ययुग में जाएंगे। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला बहुत अच्छा होने वाला, ठीक है ना। ज्ञान क्लियर है बुद्धि में, पवित्रता, पवित्र बुद्धि दी है, पवित्रता भर दी है बुद्धि में कि मुझे पवित्र बनना ही है, शांति भर दी है, प्रेम सुख आनंद और शक्तियां भर दी हैं, बुद्धि में भरी है, मन में नहीं भरी है। और इन सातों गुणों के आधार से दैवी गुण बनते हैं, जैसे तीन कलर होते हैं ना, तीन कलर होते हैं, रेड ब्लू और येलो, तीन कलर के मिश्रण से, अलग अलग मिश्रण से हम कितने कलर बना सकते हैं, 100 से भी ज्यादा कलर बना सकते हैं। ऐसे इन सातों गुणों के मिश्रण से, सातों एनर्जी के मिश्रण से दैवी गुण बनते हैं। कौन कौन से दैवी गुण? सत्यता, निर्भयता, अंतर्मुखता, एकाग्रता, एकांतवासी है ना, धैर्यता, गंभीरता, रमणीकता, सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, निमित्त भाव, निर्माण भाव है ना, निर्मल वाणी, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, ऐसे बहुत सारे दैवी गुण इनके मिश्रण से बनते हैं। आपने पांडव वन में देखे हुए 56 गुण लिखे हुए हैं ना, पर बहुत सारे इसके अलावा भी बहुत सारे बन सकते हैं। तो अब हमारी बुद्धि में वो भरा हुआ है, अब हमको क्या करना है, इस बुद्धि के आधार पर अब हमें दिव्य बुद्धि को यूज करना है। दिव्य बुद्धि क्या कहती है? मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। ये सामने कौन है? ये भी एक आत्मा है। ये सामने कौन है? ये भी एक आत्मा है। ये मेरी पत्नी नहीं, ये भी एक आत्मा है। ये मेरा बच्चा नहीं, ये भी एक आत्मा है ना। और पुरानी बुद्धि क्या कहती है? क्या कहती है पुरानी बुद्धि? क्या कहती है? नहीं, ये मेरा बेटा है ना, ये मेरा ये है, ये मेरा ये है, ये मेरा, इसने मेरे को धोखा दिया था, इसने मेरे को तंग किया है, इसने मेरे से मुझे बदला लेना है। तो अब जब बाबा के बच्चे बने तो बाबा ने जो गिफ्ट दिया उसको यूज करना है। रावण की गिफ्ट थी पुरानी बुद्धि, उसको यूज नहीं करना है, वो रावण की गिफ्ट थी। अभी किसकी गिफ्ट, कौन सी गिफ्ट यूज करनी है? बाबा की गिफ्ट यूज करनी है। और यही याद की यात्रा है, जो बाबा ने मुझे गिफ्ट दी उसको याद करना है। इस है तरीका, सरल तरीका है ना, दिव्य गुण की, दिव्य बुद्धि के आधार पर मुझे संकल्प करने हैं, दिव्य बुद्धि के आधार पर स्मृति को इमर्ज करना है। दिव्य बुद्धि क्या कहती है? स्मृति में क्या कहती है? कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है अच्छा होने वाला। और वो पुरानी वाली बुद्धि क्या कहती है? जो हुआ बहुत बुरा हुआ, जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, जो होने वाला है बहुत बुरा होने वाला है। नहीं, तो कौन सी बुद्धि यूज करनी है? दिव्य बुद्धि यूज करनी है। तो हमको दिव्य बुद्धि यूज करनी है। अभी हमको ये दिव्य बुद्धि क्या कहती है? मैं एक आत्मा हूं, ये भी एक आत्मा है, और मेरा पिता कौन है? मेरे सर्व संबंध किसके साथ है? मेरी मां कौन है? शिव बाबा। बाप कौन है? शिव बाबा। टीचर कौन है? शिव बाबा। और गुरु कौन है? सतगुरु कौन है? दोस्त कौन है? शिव बाबा। नहीं, भाई कौन है? शिव बाबा। और मेरा साजन कौन है? पत्नी कौन है? शिव बाबा। नहीं, पति कौन है? और मेरा सर्जन कौन है? मेरा डॉक्टर कौन है? कौन है सर? डॉक्टर कौन है हमारा? शिव बाबा ना। तो ये अपने आप को बार 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 रियलाइज करना है। तीन बातों का ध्यान रखना है, स्वयं का, स्वयं को याद करो, बाप को याद करो, और समय को याद करो। स्वयं को याद करो, मैं कौन, मेरा बाप कौन, और समय कौन सा चल रहा है। ये कल्याणकारी समय है, संगम का समय है, यही समय विक्रम विनाश करने का है, यही समय 5000 साल की प्रलब्ध बनाने का है। इस समय का एक एक सेकंड एक वर्ष के समान है। अगर हमने समय बाप की याद में किया, यूज किया, तो क्या होगा, एक वर्ष की प्रलब्ध बनी, और एक सेकंड वेस्ट किया तो क्या हुआ, एक वर्ष का नुकसान हो गया। तो ये अटेंशन हमको बार बार दिव्य बुद्धि के आधार से स्मृति और विमर्श करनी है। दिव्य बुद्धि के आधार से वृत्ति हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, दिव्य बुद्धि के आधार से हमारे भावना होनी चाहिए, शुभ भावना शुभकामना सबके प्रति, और दिव्य बुद्धि के आधार पर हमारे संकल्प हमें इमर्ज करने, श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज करने, सौमान वाले संकल्प इमर्ज करने। तो जितना जितना हम दिव्य बुद्धि को यूज करते जाएंगे, तो पहले स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प, ये मन बदलता जाएगा, और दिव्य बुद्धि के आधार पर मुरली, जो बाबा की मुरली है, उसको अध्ययन करते जाएंगे। ये किसकी मुरली है, जब मुरली सुनते तो क्या याद रखना है, किसकी मुरली है ये, परमात्मा बाबा की मुरली मेरे लिए है, सबके लिए नहीं, बाबा स्पेशल मेरे लिए चला रहे हैं, और बाबा की गोद में बैठ के मुरली सुने, सूक्ष्म वतन में बैठ के मुरली सुने, वो भावना से मुरली सुने कि परमात्मा का महावाक्य है। आज राष्ट्रपति कुछ कह देता है, हमसे उसके महावाक्य कितना, मुझे राष्ट्रपति ने कुछ एक शब्द कहा, एक लाइन कही, मुझे वो बार बार लाइन याद आती है, बोलता नहीं हूं, और जो मुझे मेरे बाप ने, राष्ट्रपति के बाप ने कहा, वो मुरली क्या है, सबका बाप ना, सबका बाप ना, सब देशों के हर व्यक्ति का बाप है वो, ये वो मुझे जो मुरली में कह रहा है वो मुझे याद ही नहीं, बाबा ने सुबह क्या कहा था मुरली, याद है सुबह मुरली, याद है सुबह की। अब एक्चुअली ये मुरली क्या है, मुरली है स्मृति, मुरली में चार चीजें हैं, स्मृति है, स्मृतियां हैं, वृत्ति है, भावना और संकल्प, चारों के चारों अति श्रेष्ठ हैं, पॉजिटिव हैं। तो जो मेरे अंदर जो स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प रावण के भरे हुए थे, उसको बदलने का साधन मुरली है। हमें उसको उससे रिप्लेस करना है, पुरानी स्मृतियों को, मुरली में जो स्मृतियां मिली कि तुम्हारे सत्युग में किसके महल होंगे, हीरे ज्वारात के महल होंगे, तुम्हारा कैसा, कैसी काया होगी, कंचन काया होगी, आपको पता सतयुग में क्या होता है, आज ऑक्सीजन 20% है वातावरण में, सतयुग में 50% ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन के कारण हमारा खून का लाल रंग होता है, चेहरे का रंग लाल होता है, 20% पे हमारा रंग इतना लाल है तो समझो 50% ऑक्सीजन कैसा लाल होगा, कितना सुंदर चेहरा, कितनी सुंदर शरीर होगा, कितनी कंचन काया होगी, कोई बैक्टीरिया कोई वायरस जिंदा ही नहीं रह सकता है। 50% ऑक्सीजन में कोई भी बैक्टीरिया वायरस मक्खी मच्छर कोई भी जिंदा ही नहीं, सांप बिच्छू जिंदा ही नहीं रह सकते, सबके सब कम ऑक्सीजन में रहने वाले प्राणी है, वहां होता ही नहीं, पैदा ही नहीं रह सकते, हो ही नहीं सकते, कितना सुंदर वातावरण होगा, है ना। वो स्मृतियां हमें अंदर भरनी है, वृत्ति एटीट्यूड कैसा हमारा, आपस में एटीट्यूड, हमारी वृत्ति कैसी हो, स्मृति से स्थिति बनती है, वृत्ति से वायुमंडल बनता है, भावना से वाइब्रेशन बनते हैं, और संकल्प से सृष्टि बनती है। तो जैसी हमारे अंदर स्मृतियां इकट्ठी होती जाएंगी, वैसी वृत्ति बनती जाएगी, अर्थात वैसा वायुमंडल बनता जाएगा, जैसा वायुमंडल बनता जाएगा फिर वैसी भावना से वाइब्रेशन निकलते जाएंगे, और फिर जैसे हमारी भावना होगी वैसे संकल्प बनेंगे, उन संकल्पों के आधार से सृष्टि बनती जाएगी, इस तरह से मनसा सेवा होती रहेगी ऑटोमेटिक। तो याद क्या है, याद की यात्रा क्या चीज है, याद की यात्रा का अगर आप उल्टा करें तो क्या बन जाता है, याद से याद को उल्टा करो तो क्या बन जाएगा, दया नहीं, और योग को उल्टा करो तो क्या बनेगा, गयो, है ना? नहीं, यो का उल्टा क्या होता है? गयो, कहां गयो? और याद का उल्टा दया, अर्थात हम अपने ऊपर रहम करें सबसे पहले तो, कि मैं क्या था, क्या बन गया, है ना? कहां मैं विश्व का मालिक था और मैं क्या बन गया हूं? तो अपने आप को रियलाइज करके, अपनी रियलिटी को रियलाइज करें, शांति क्या चीज है, शांति किसे कहते हैं? हमने कहा साइलेंस पावर, याद की यात्रा माना क्या? साइलेंस पावर, साइलेंस की यात्रा के द्वारा साइलेंस पावर से विक्रम विनाश होंगे ना, तो साइलेंस क्या चीज है, शांति क्या है? शांति जो हमारे अंदर मन में संकल्प उठते हैं, अगर बहुत संकल्प उठ रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? अशांति, कैओस, है ना? जब हम अपने आप से जो मैं हूं, अगर हम उसको रियलाइज ना करके दूसरे किसी को रियलाइज करते हैं तो मन अशांत हो जाता है। जैसे मैं अपने आप को देह समझूं तो देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह के स्वभाव, संस्कार, देह के सब चीजें याद आती जाएंगी और बहुत संकल्प चलेंगे, मन में डर लगेगा, देह को कुछ हो जाए, कुछ ना हो जाए, देह के संबंधों में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, देह के पदार्थ कोई आग ना लग जाए, चोरी ना हो जाए, मेरे स्वभाव संस्कार जो है वो कोई उसमें आहत ना करे मुझे, बहुत सारे संकल्प चलते हैं। और जैसे ही मैं अपने को आत्मा समझा तो क्या हुआ? ये मेरी रियलिटी है, रियलिटी से रॉयल्टी आती है और अनरियलिटी से भिखारी बन जाते हैं। अगर हम अपनी अनरियलिटी, जो मैं नहीं हूं वो बनूं तो क्या हो जाएगा? आज मैं जो हूं मैं भूल जाऊं तो क्या हो जाएगा? भिखारी बन गए। और रियलिटी में रहूं कि मैं कौन हूं, किसका हूं, तो मालिक बन गया, रॉयल्टी आ गई, पर्सनैलिटी बन गई, है ना? तो ये रियलिटी को जितना जितना हम याद करें, उसकी स्थिति में रहें, टिकें, उसको स्मृति में इमर्ज करें, उसको बार बार रिवाइज करें, उसको बार बार एक्चुअलाइज करें, जब हम कार्य व्यवहार में आए, किसी के भी संबंध संपर्क में आए, उसको प्रैक्टिकल में जब हम बार बार रियलाइज करें तो क्या होगा? मेरे संकल्पों की स्पीड कम होती जाएगी। और जो जैसे मैं आत्मा हूं तो मुझे कौन याद आएगा? ऑटोमेटिक कौन याद आएगा? परमात्मा याद आएगा। जैसे मैं अपने आप को सतीश गुप्ता समझता हूं, मुझे कौन याद आता है? अपना शरीर का बाप याद, मां याद आती है। जैसे ही मैं अपने आप को आत्मा समझता तो कौन याद आएगा? आत्मा का बाप कौन, मां कौन? परमात्मा। अपने आप ऑटोमेटिक है। एक्चुअली है क्या कि परमात्मा की तार यहां तक पहुंची हुई है, उसकी शक्ति यहां तक है और मैं कहां हूं? इस देह के खोल में हूं, अपने आप को देह समझे बैठा हूं। जरा ही मैं स्मृति में आऊं कि मैं आत्मा हूं तो एकदम वो किरण आकर के मुझे चिपक जाती है। हमें कुछ और करना भी नहीं है, सिर्फ एक ही अभ्यास करना है कि मैं एक आत्मा हूं। जैसे ही आत्मा बने, अपने आप को बिंदु समझा, बाबा की मुरली में बड़ा क्लियर लिखा है ये बात, अव्यक्त मुरली में, ये आत्मिक स्थिति में टिकते ही परमात्मा की याद ना आए ये हो नहीं सकता है। आत्मा बने और परमात्मा कनेक्शन लगा, और परमात्मा से कनेक्शन लगा तो तुरंत क्या आएगा? इसमें टिक गए, बस मैं एक आत्मा हूं, परमात्मा की संतान, तो क्या हुआ? विचार आने बंद हो गए, फालतू विचार आने बंद हो गए। शांति का सागर है वो, उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो है। परमात्मा की फ्रीक्वेंसी क्या है? जीरो। एक ही संकल्प में टिक गए, बस मैं आत्मा हूं, मैं कौन हूं, मैं मर नहीं सकता हूं, अजर अमर विनाशी हूं, सब डर खत्म, सब चिंताएं खत्म, और ये ज्ञान अंदर टिक गया। जैसी फ्रीक्वेंसी एक से कम होती है तो मेरे अंदर जो मॉलिक्यूल्स बन गए हैं, केमिकल जो बन गए हैं ब्रेन में, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, जो देह और देह के संबंध और देह के पदार्थों के मॉलिक्यूल्स बन गए हैं, जो विकर्म के रूप में मुझसे गलत काम, वो केमिकल ऐसे बन गए हैं, वो नेचुरली मुझसे गलत काम कराते हैं, क्रोध आना, लोभ मोह अहंकार आना, या उसके और बाल बच्चों का मेरे अंदर आना, वो ऑटोमेटिक हो गया है, क्योंकि वो केमिकल ब्रेन के थ्रू हमारी करनेदों से गलत काम करा रहे हैं। जैसे ही स्मृति पक्की करते हैं, रियलाइज करते हैं, रिवाइज करते हैं और एक्चुअलाइज करते हैं तो अनुभव होने लगता है। और क्या अनुभव होने लगता है? बहुत गहरी शांति। मैं आपको जैसे एक एग्जांपल दे दूं, अभी पीछे एक रिकॉर्डिंग थी, एक लेक्चर, एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करना था, तो उसमें उन्होंने क्या किया, जब मैं दिल्ली में गया था तो उन्होंने स्टूडियो में क्या किया, मुझे एक कमरे में, मतलब जहां स्टूडियो था उसमें अंदर ले गए, और उन्होंने क्या किया, थोड़ी देर में तो पहले तो उन्होंने एसी भी चल रहा था, पंखा भी चल रहा था और भी कुछ आवाज आ रही थी, तो उन्होंने पहले तो सारा दरवाजा, पहले दरवाजा बंद किया, दरवाजा बंद करने के बाद लाइट भी ऑफ कर दी, फिर एसी भी ऑफ कर दिया, पंखा भी ऑफ कर दिया, खिड़की दरवाजा कुछ भी नहीं। मैंने कहा ये सब क्यों ऑफ कर दिया, मेरा तो सांस घुटेगा। कहता है बिल्कुल भी जरा आवाज नहीं चाहिए, एसी की आवाज भी होगी ना तो रिकॉर्डिंग में गड़बड़ हो जाएगी। तो वो रिकॉर्ड जब बाद में फिल्म आवाज सुनाई देगी ना, वो बिल्कुल आवाज समझ नहीं आएगी दूसरों को, पब्लिक को। टोटल साइलेंस चाहिए, एकदम टोटल साइलेंस, तब रिकॉर्डिंग होगी। तो ऐसे ही जब हमारे यहां नई रिकॉर्डिंग होगी, सत्यों की रिकॉर्डिंग होगी, त्रेता द्वापर कलयुग दोबारा से जो रिकॉर्डिंग होगी, कंप्लीट साइलेंस चाहिए, जरा भी कोई आवाज नहीं, ना देह की आवाज, ना देह के संबंधों की आवाज, ना देह के पदार्थों की आवाज, ना देह के स्वभाव संस्कार की आवाज, बस परमात्मा इज लवलीन, बस मैं बाबा का बच्चा हूं, बस मैं आत्मा और ये मेरा बाबा, बस दोनों एक दूसरे के अंदर समाये हुए। ये स्थिति जब होगी तो रिकॉर्डिंग होगी नई। क्या रिकॉर्डिंग होगी, तब मेरे ब्रेन में जो मॉलिक्यूल्स हैं, कौन से नए मॉलिक्यूल बनेंगे, मैं एक आत्मा हूं, मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं, परमात्मा के संतान हूं, और तब ऑटोमेटिक हर व्यक्ति के प्रति आत्मिक दृष्टि की भावना और मॉलिक्यूल रिकॉर्ड हो जाएंगे। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होने वाला वो अच्छा हो रहा, होने वाला ये रिकॉर्ड हो जाएगा। और जब ये रिकॉर्डिंग होगी, यही है विकर्मों का विनाश होना। वो कब होगा, जब कंप्लीट साइलेंस की स्थिति होगी, जब कोई आवाज कहीं से नहीं होगी, एकदम आवाज से परे की स्थिति, परम धाम की स्थिति होगी, लवलीन अवस्था होगी। वो कब होगी, इसके लिए चार परहेज चाहिए, चार मर्यादाएं जो बाबा ने हमें दी हैं वो चाहिए। पहली मर्यादा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य कैसा होना चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क और स्वपन तक ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ है, जैसे आत्माएं ब्रह्म तत्व में रहकर आचरण करती ना, आपस में एक दूसरे को आत्मा देखती हैं, तो वो आचरण हमारे मन में होना चाहिए, हमारे बोल में होना चाहिए, हमारे कर्म में होना चाहिए, हमारे संबंध में होना चाहिए, हमारे संपर्क में होना चाहिए, हमारे स्वपन में भी ऐसा ही होना चाहिए। तो जितनी जितनी गहराई वो पवित्रता की हमारे अंदर आती जाएगी, उतना उतना हम ज्यादा गहरी साइलेंस का अनुभव करते जाएंगे, उतना उतना हमारी पवित्रता बढ़ती जाएगी, उतना उतना विकर्म विनाश होते जाएंगे। उतनी गहरी साइलेंस, उतनी गहरी हम ऊंची स्टेज में जाते जाएंगे, उतना उतना हम ज्यादा परमात्मा को प्यारे लगने शुरू हो जाएंगे, परमात्मा के बाबा के दिल तक नशीन उतने उतने बनते जाएंगे जितनी जितनी पवित्रता आती जाएगी। दूसरी जो मर्यादा है वह शुद्ध अन्न। शुद्ध अन्न भी मनसा में, वाचा में, कर्मणा में, संबंध में, संपर्क में और स्वपन तक भी शुद्ध अन्न की, अर्थात बाबा की याद में अपनी कमाई का भोजन, बाबा की याद में कमाई करना, बाबा की याद में बनाना और बाबा की याद में खाना। जब इतनी अच्छी धारणा होगी स्वपन तक भी, तब हमारी वो स्टेज बनेगी, उतनी गहरी साइलेंस की अनुभूति होगी, उतने अधिक विक्रम विनाश होंगे। फिर है सत्संग। सत्संग माना निरंतर एक सत्य बाप का संग। जितना चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर कर्म करते, जितना ये अभ्यास होगा कि बाबा मेरे साथ है, और बाबा की जो मुरली है, मुरलीधर की मुरली, वो मुरली मेरे मन में है, मेरी स्मृति वृत्ति भावना संकल्पों में मुरली है, मुरली सदा मेरी जेब में है, जब भी एक मिनट भी मिले मुरली निकाल के बाबा की कुछ और देखने के बजाय बाबा की मुरली देखें, बाबा की मुरली का अध्ययन करें, बाबा की बाबा ने आज क्या कहा उसको समझें, उसकी गहराई में जाएं, उसका मनन चिंतन करें, तो ये सत्संग। जितना भी मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क स्वपन तक भी जब ये हमारे साथ रहेगा, तो ये हमारे अंदर धारणा बनती जाएगी। और चौथी बात है दैवी गुणों की धारणा। दैवी गुण कौन कौन से? सत्यता, निर्भयता, अंतर्मुखता, धैर्यता, गंभीरता, रमणीकता, सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, संतुष्टता, हर्षित मुखता, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमान बरदार, निमित भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, सम्मान में रह गया सबको सम्मान देना, वो जो दैवी गुण है वो मेरे प्रैक्टिकल जीवन में हो। अवगुणों को छोड़ना है, अवगुणों को फुल स्टॉप लगाएं, दैवी गुणों को धारण करें। जब वो स्टेज मेरे अंदर आएगी, जितना जितना चारों चीजों की धारणा मेरे अंदर बढ़ती जाएगी, मर्यादा ये चार फ्रेज मैं जीवन में करता जाऊंगा, उतना उतना मेरी साइलेंस की स्टेज बढ़ती जाएगी, याद की यात्रा स्ट्रांग होती जाएगी और उतना उतना विकर्म विनाश होते जाएंगे, त्यों त्यों मेरी फरिश्ता स्थिति आती जाएगी, केमिकल्स बदलते जाएंगे और मेरा मन और बुद्धि यहां रहते हुए दुनिया में हर कार्य करते भी बाबा के साथ लगा रहेगा, बाबा की याद में लगा रहेगा और इतनी एनर्जी हो जाएगी जैसे बाप समान मेरे मस्तक से ये चेहरा नजर नहीं आएगा, बाबा नजर आएगा, नैनो द्वारा बाबा नजर आएगा और चारों तरफ क्या होगा, वो लाइट का ऑरा, क्योंकि जितनी याद आई उतना ही लाइट का ऑरा बढ़ता जाएगा, बड़ा बड़ा होता जाएगा, बड़ा बड़ा होता जाएगा और दूर दूर तक वो फैलता जाएगा और उस पर प्रकृति के तत्वों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। भूकंप आएगा, बाढ़ आएगी, वो आपको टच नहीं करेगी। आज कल बाबा ने कहा ना, कल का वरदान था परसों का, कि भले बाढ़ भी आ जाए, बाढ़ भी सागर भी डुबाने को आ जाए तो भी आपको प्रभाव नहीं होगा, तो भी आपकी सेफ्टी होगी, वो ऑरा आपकी प्रोटेक्शन करेगा, हमारी प्रोटेक्शन करेगा। वो ये है जमा, ये है जमा की कमाई, इसको मुख से बोलने की बात नहीं होगी, अंत में ये साक्षात्कार कराएगा, ये साक्षात्कार मुहूर्त बनेगा, जो जमा करेगा वो सुख पाएगा, है ना, अंत में यही हमारी कमाई होगी, यही हमारा आगे साक्षात्कार होगा। तो अभी है कमाई जमा करने का समय, समय बहुत थोड़ा है, है ना। इसके लिए सबसे बड़ा जो विक्रम विनाश करने का समय है अमृत वेला, अमृत वेले का समय ही हम विक्रम विनाश कर सकते हैं अच्छे से। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, सोने से पहले अपना चार्ट भरना होगा, अपने मन की भावनाएं जो भी फीलिंग्स हैं वो लिखनी होगी, बाबा को लेटर लिखना होगा, आज के जो विचार, आज के जो गलत काम भी हो गए, कुछ मर्यादा के खिलाफ हो गया, वो सब आज ही बाबा को लिख करके देना होगा सोने से पहले रोज, और अपने उसको दे करके और फिर चार्ट भर के फिर बाबा की याद में 15 मिनट कम से कम बाबा की याद में, गहरी याद में। हमारा बेडरूम सूक्ष्म वतन है और हमारा बेड बाबा की गोद है, तो यहां इस बेड पे नहीं सोना है, इस पे तो शरीर को, हमारी कार को पार्क करना है, ये तो गैरेज है, जो बेड है ना वो तो गैरेज है, वहां शरीर को पार्क किया और यहां से कहां जाओ अपने बेडरूम में, बेडरूम कहां है, सूक्ष्म वतन, और सूक्ष्म वतन में बाबा की गोद में जाके सो जाना और फिर फ्रेश, जब नींद बहुत अच्छी आएगी, लेटर लिखो, आज के विचार आज की भावना सब बाबा को दे दो, चार्ट भरो और बाबा से जो गलती हुई उससे माफी में ले लो और जो आगे के लिए संकल्प ले लो और फिर याद में सोना है 15 मिनट कम से कम याद करके, और फिर अमृत वेला उठते ही पावरफुल होगा और उसमें विक्रम विनाश तेजी से होंगे और फिर हर घंटे घंटे में 15-15 मिनट में बार बार मुरली, आज बाबा ने क्या कहा, 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 बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, वो अभ्यास निरंतर अटेंशन चाहिए, जो बाबा ने कहा 5 स्वरूप का अभ्यास दिन में 8 बार करो, 10 बार करो, 15 बार करो, 20 बार करो, जो नए आए उनको तो ज्यादा करना है, बाबा ने कहा लास्ट वाले भी फास्ट जा सकते हैं, फर्स्ट डिवीजन मतलब 108 की माला में आ सकते हैं, तो वो अभ्यास हमको करना है। बाबा अभी आ रहा है ना 4 दिन में 31 को, इस साल में अभी हम बीती को बीती करें, फुल स्टॉप लगाएं, आज से हम वो अभ्यास करें। बाबा 4 दिन में आ रहा है ना, 3 दिन में आ रहा है, तो 3 दिन खूब जोर से अभ्यास करके बाबा को दिखाएं कि बाबा देखो हमने कुछ ये नवीनता करके दिखाई कि हमने अपने 3 दिन में इतने विक्रम विनाश कर दिए ना, बाबा भी देखे कि हाँ बाबा के बच्चे कितने पक्के हैं, है ना। ऐसी स्थिति से हम सब पावरफुल योग करें, बाबा की याद में रहें और निरंतर करें, फिर कोई विक्रम ना करें, अटेंशन रखें, इसमें टेंशन की बहुत आवश्यकता है कि एक भी विक्रम हमसे ना हो, एक भी विक्रम किया तो वापस हम इतने ऊपर चढ़े फिर वापस नीचे आ गए, फिर चढ़े फिर नीचे आ गए, ऐसा नहीं, तो विक्रम अब हमसे कोई ना हो। जहां बाबा की याद होगी विक्रम होगा ही नहीं, बाबा मेरे साथ होगा विक्रम होगा ही नहीं। तो बाबा की मुरली और बाबा दोनों हमेशा साथ रहेंगे तो विक्रम एक भी नहीं होगा। दिनचर्या में जरा ऊपर नीचे नहीं करें, अमृत वेला पावरफुल, फिर नहाने नहाते स्नान करते समय बाबा की याद, फिर मुरली बाबा की गोद में बैठ के सुनना, फिर बाबा की याद में भोजन करना, फिर बाबा की याद में कार्य, जो भी कार्य कर, जो भी सेवा मिली या कार्य करें वो भी बाबा की याद में बार 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 अटेंशन रखना, फिर लंच बाबा की याद में करना, फिर रेस्ट बाबा की याद में करना, बाबा रेस्ट में जाने से पहले फिर मुरली रिवाइज कर लो, फिर उठ के फिर मुरली रिवाइज करो, फिर शाम को फिर वॉकिंग करनी है तो वॉकिंग करते समय बाबा की याद करो, फिर शाम को योग करो, फिर सोने के पहले फिर वो चार्ट चेक करना, लेटर लिखना और फिर याद करके सुनो। तो ऐसी दिनचर्या, ऐसी अटेंशन वाली दिनचर्या हो तो हम देखेंगे हम जल्दी जो बाबा हमसे चाहता है, बाबा की हम बच्चों में शुभ आश है कि मेरे बच्चे सबके सब क्या बने, राजा बच्चे बने, है ना, सब राजा बने, सब राज्य अधिकारी, अभी ही हम सब राज्य अधिकारी बन करके भविष्य की अपनी सीट पक्की कर लें, अपने महल बुक करा लें, आजकल फ्लैट बुक कराते हैं ना, तो अपना अपना सोने का महल, है ना, जितनी जितना भी चाहिए, कितने हीरे जवाहरात लगाने वो भी अभी बुक करा सकते हो, पुष्पक विमान कितने चाहिए वो भी बुक करा सकते हो, बुकिंग खाली ओपन है अभी, ठीक है, तो अपनी अपनी सब बुकिंग करा लें, है ना, अभी बहुत सारे फ्लैट बाकी हैं, बहुत सारे महल बाकी हैं, है ना, और फ्री मिल रहे हैं सभी, है ना, ठीक है, तो हम सभी तो याद की यात्रा द्वारा विक्रम, काम बहुत बाकी है, सिर्फ अटेंशन की आवश्यकता है, मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है, ठीक है। अभी हम सभी 3 मिनट ऐसी पावरफुल याद में बैठेंगे, सभी एकदम देह को भूल कर एकदम से व्हाइट लाइट में बैठेंगे, रेड लाइट नहीं करें, व्हाइट लाइट में बैठेंगे और एकदम 3 मिनट पावरफुल याद में बैठेंगे, ऐसा अनुभव करेंगे कि जैसे सूक्ष्म वतन में बाबा के सामने बैठे, ठीक है, और उसके भी ऊपर परम धाम में एकदम ज्योति बिंदु आत्मा शिव बाबा के सामने बैठे। चलिए व्हाइट लाइट में 3 मिनट बिना म्यूजिक के योग करेंगे। ओम शांति। तो इस तरह से साइलेंस पावर को जमा करके हम और अपने संबंध संपर्क में भी ये ज्ञान पवित्रता शांति को यूज करते हुए, शक्तियों को यूज करते हुए उनको भी संतुष्ट करके संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेंगे और ऐसे हम ओम शांति।